एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हमारे सोचने के तरीके को सच कहूं तो चुनौती देती है। डेविड आर लॉय की द वर्ल्ड इज मेड ऑफ स्टोरीज।
नमस्कार। और ये किताब वाकई एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, बुनियादी लेकिन चौंकाने वाले विचार पर आधारित है। जिसे हम असलियत मानते हैं या सच्चाई, वो शायद उतनी ठोस है नहीं जितनी लगती है। लॉय का तर्क है कि हमारी दुनिया, हमारी समझ, हमारे अनुभव, ये सब कहानियों के एक बहुत ही पेचीदा ताने बाने से बुने हुए हैं।
और ये विचार आज के समय में तो मतलब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी लगता है ना।
बिल्कुल।
हम हर तरफ से कहानियों से घिरे हैं। सोशल मीडिया पर देखिए, विज्ञापनों में, खबरों में।
हाँ, और तो और वो कहानियां जो हम खुद को सुनाते हैं।
सही कहा। तो ये समझना कि ये कहानियां काम कैसे करती हैं, कैसे हमारी सोच को, हमारे व्यवहार को बदलती हैं, ये बहुत जरूरी हो गया है।
हाँ, और अच्छी बात ये है कि लॉय की किताब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, ये हमें ये भी दिखाती है कि कैसे इन कहानियों को पहचान कर, उनके असर को समझकर, हम अपनी जिंदगी को व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी ज्यादा जागरूक और शायद ज्यादा सार्थक दिशा दे सकते हैं।
तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं, देखते हैं कि कहानियां हमारी दुनिया बनाती कैसे हैं।
हाँ बिल्कुल। लेकिन इस विचार को ठीक से समझने से पहले शायद हमें इसके पीछे के विचारक को थोड़ा जान लेना चाहिए, डेविड आर लॉय।
हाँ, सही रहेगा। तो कौन है ये डेविड आर लॉय?
वो सिर्फ एक लेखक नहीं है, वो एक जाने माने बौद्ध दार्शनिक है, एकेडमिक है और ज़ेन परंपरा के शिक्षक भी हैं। उन्होंने सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में पीएचडी की है।
अच्छा, और उनकी सबसे खास बात शायद ये है कि वो पूर्वी दर्शन, खासकर बौद्ध धर्म और पश्चिमी विचारों के बीच एक पुल बनाते हैं, संवाद स्थापित करते हैं।
हाँ, ये उनकी खासियत है। उन्होंने जापान और अमेरिका जैसी जगहों पर पढ़ाया भी है, तो उन्हें अलग अलग संस्कृतियों को, सोचने के अलग तरीकों को करीब से देखने का मौका मिला है।
तो इसका असर उनके लेखन पर दिखता होगा?
बिल्कुल। एक अनूठी गहराई आती है, एक व्यापकता, और उनका नज़रिया सिर्फ किताबी नहीं है, वो खुद ज़ेन ध्यान का अभ्यास करते हैं और वो बौद्ध शिक्षाओं को आज के सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों से जोड़ने पर बहुत जोर देते हैं।
हाँ, मैंने सुना है इंगेज्ड बुद्धिज्म के बारे में, शायद वो इसी की बात कर रहे हैं।
हाँ बिल्कुल। यानी बौद्ध सिद्धांतों को सिर्फ व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, पर्यावरण की स्थिरता जैसी चुनौतियों को समझने और सुलझाने में लगाना। उनकी पिछली किताबें भी हैं, जैसे मनी, सेक्स, वॉ, कर्मा या अ न्यू बुद्धिस्ट पार्ट। वो इसी सक्रिय समाज केंद्रित सोच को दिखाती हैं।
तो फिर ये तो जाहिर है कि दर्शन, ध्यान और अलग अलग संस्कृतियों की ये जो समझ है उनके पास, ये संगम उन्हें इस किताब के विषय के लिए, मतलब द वर्ल्ड इज मेड ऑफ स्टोरीज, एक बहुत ही सही आवाज बनाता है।
हाँ, और वो मुश्किल विचारों को भी आसान बनाकर समझा पाते हैं।
तो चलिए अब सीधे किताब के दिल पर आते हैं। द वर्ल्ड इज मेड ऑफ स्टोरीज, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, लॉय का मूल तर्क क्या है?
मूल तर्क ये है कि हम जिस दुनिया का अनुभव करते हैं वो सीधे सीधे वास्तविकता नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
वो वास्तविकता के बारे में हमारी कहानियों का नतीजा है। पर यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, लॉ ये नहीं कह रहे कि ये भौतिक दुनिया, मतलब पेड़, पहाड़, ये सब असली नहीं है।
हाँ, ये तो है ही।
बिल्कुल, ये मौजूद हैं, लेकिन हम इन्हें कैसे समझते हैं, इनका क्या मतलब निकालते हैं, इनके साथ कैसे पेश आते हैं, ये सब उन कहानियों पर निर्भर करता है जो हमने सीखी हैं, जिन्हें हम सच मानते हैं।
मतलब कहानियां हमारे चश्मे की तरह हैं जिनसे हम दुनिया देखते हैं।
हाँ, एक तरह से वो हमारी धारणाओं को, हमारे मूल्यों को, यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी आकार देती हैं। लॉय कहते हैं कि इंसान होने का मतलब ही है कहानियां गढ़ना और कहानियों में जीना। हम अपने बिखरे हुए अनुभवों को समझने के लिए उन्हें कहानी के रूप में ढालते हैं। लेकिन लॉय यहाँ एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि कहानियां सिर्फ हकीकत को दर्शाती नहीं है,
बल्कि
वे हकीकत को बनाती हैं।
बनाती हैं कैसे?
सोचिए, पैसा क्या है, राष्ट्र, कानून, मानवाधिकार, ये सब असल में शक्तिशाली सामूहिक कहानियां ही तो हैं जिन पर हम सबने सहमति बना ली है।
हाँ, बात तो सही है।
और इसी सहमति से इन्हें असली शक्ति मिलती है। और यही समझना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉय के मुताबिक हम कई ऐसी बड़ी मास्टर कहानियों के असर में जी रहे हैं जो टिकाऊ नहीं है, जो नुकसान पहुंचा रही हैं।
जैसे कौन सी कहानियां?
जैसे लगातार आर्थिक विकास की कहानी, ये कि अर्थव्यवस्था को हमेशा बढ़ते ही रहना चाहिए, चाहे पर्यावरण का जो भी हो।
हाँ, ये तो सुनते ही रहते हैं।
या फिर राष्ट्रवाद की कहानी, जो हम बनाम वे की सोच पैदा करते हैं। प्रकृति पर इंसान की जीत की कहानी, जो हमें बाकी सबसे अलग और बेहतर मानती है। और शायद इन सबके पीछे सबसे बुनियादी कहानी, मैं की कहानी, जो हमें एक अलग, बिल्कुल स्वतंत्र इकाई के रूप में देखती है।
तो लॉय मानते हैं कि यही कहानियां हमारे आज के संकटों की जड़ में हैं, सामाजिक, पर्यावरणीय।
हाँ, और आध्यात्मिक भी, लॉय का यही मानना है। तो ये किताब एक तरह से हमें जगाने का काम करती है, हमें उन अदृश्य धागों को दिखाती है जिनसे हमारी दुनिया बुनी है।
ये विश्लेषण करती है कि कैसे मैं की कहानी हमें असुरक्षित बनाती है, दुख देती है, कैसे पैसे और बाजार की कहानी लालच बढ़ाती है,
कैसे राष्ट्र की कहानी हमें बांटती है, संघर्ष पैदा करती है, और कैसे प्रकृति से अलगाव की कहानी हमें शायद विनाश की ओर ले जा रही है।
चलिए किताब के अंदर थोड़ा और झांकते हैं। लॉय अपनी बात को आगे कैसे बढ़ाते हैं, किताब की बनावट कैसी है?
शुरुआत में वो इस विचार की नींव रखते हैं कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि हमारी चेतना का, हमारे कॉन्शियसनेस का एक जरूरी हिस्सा है। और यहाँ वो बौद्ध दर्शन की एक बहुत गहरी अवधारणा का इस्तेमाल करते हैं, शून्यता, एम्प्टीनेस या शून्यता।
शून्यता, इसका मतलब क्या है? कहीं ये कुछ नहीं या खालीपन तो नहीं?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये बहुत आम गलतफहमी है। शून्यता का मतलब अस्तित्वहीनता नहीं है, इसका गहरा मतलब है कि किसी भी चीज का, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई विचार या मैं खुद, अपना कोई स्थायी अंदरूनी स्वतंत्र सार या एसेंस नहीं होता।
अच्छा, थोड़ा और समझाएंगी इसे?
मतलब चीजें और विचार हमेशा संदर्भों में, रिश्तों में और एक दूसरे पर निर्भरता में ही अर्थ पाते हैं, और ये रिश्ते और अर्थ अक्सर कहानियों से ही बनते और समझे जाते हैं।
तो कोई भी चीज अपने आप में फिक्स्ड नहीं है?
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ कोई गूढ़ दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, ये हमारे दुनिया देखने के नजरिए को हिला सकता है कि कुछ भी वैसा नहीं है जैसा हम मान लेते हैं हमेशा के लिए।
ठीक है, फिर लॉय इस शून्यता के विचार को कहाँ लागू करते हैं?
वो इसे हमारे सबसे निजी अनुभव पर लागू करते हैं, मैं पर, सेल्फ पर, जिसे हम अपना ठोस स्थायी मैं समझते हैं। लॉय उसे भी एक कहानी मानते हैं।
मैं भी एक कहानी है?
हाँ, एक ऐसी कहानी जिसे हम लगातार खुद को और दूसरों को सुनाते हैं, जिसमें हम अपनी यादें, इच्छाएं, डर, उपलब्धियां, सब कुछ एक धागे में पिरोते जाते हैं।
तो क्या हमारा मैं फिर काल्पनिक है?
काल्पनिक शायद सही शब्द ना हो, ये एक रचना है, एक निर्मित चीज जो स्थिर नहीं है बल्कि लगातार बदल रही है। और ये समझना कि मैं भी एक कहानी है, कोई पत्थर की लकीर नहीं, हमें उस असुरक्षा से, उस अहंकार से, उस दुख से आज़ाद होने में मदद कर सकता है जो एक स्थायी मैं के भ्रम से पैदा होता है।
हाँ, ये बात तो है। हम कितनी बार अपनी पहचान को अपनी नौकरी से जोड़ लेते हैं, मैं मैनेजर हूँ, या अपने परिवार से, समुदाय से।
बिल्कुल, या अपनी डिग्री से, अपनी संपत्ति से। और जब इन कहानियों में बदलाव आता है तो हमें लगता है जैसे हमारा अस्तित्व ही हिल गया।
सही कहा। अच्छा, तो व्यक्तिगत मैं की कहानी से आगे बढ़कर लॉय किन कहानियों की बात करते हैं?
फिर वो आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर काम करने वाली बड़ी कहानियों पर। समाज कैसे चलते हैं? साझा कहानियों के दम पर।
साझा कहानियां,
पैसे की कहानी शायद सबसे अच्छा उदाहरण है। कागज का नोट या स्क्रीन पर दिखने वाला नंबर, अपने आप में तो इसका कोई मूल्य नहीं है ना?
नहीं तो।
लेकिन हमने, सबने मिलकर इसे मूल्य देने की कहानी पर भरोसा कर लिया है, और इसी भरोसे पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी है।
कमाल है।
इसी तरह लॉय आधुनिक पूंजीवाद और उपभोक्तावाद की कहानी की तीखी आलोचना करती है।
करते हैं।
ये कहानी हमें बताती है कि अंतहीन आर्थिक विकास न सिर्फ मुमकिन है बल्कि जरूरी भी है, और बाजार की ताकतें सब ठीक कर देंगी।
हाँ, इनविजिबल हैंड वाली बात।
बिल्कुल, लॉय इसे एक खतरनाक मिथक बताते हैं जो लालच पढ़ाता है, असमानता पैदा करता है, और पृथ्वी की जो सीमाएं हैं उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करता है।
और राष्ट्र राज्य की कहानी, उसके बारे में क्या कहते हैं?
हाँ, उसकी भी पड़ताल करते हैं। कैसे ये कहानी हम, मतलब अपने देश के लोग, और वे यानी दूसरे देश के लोग, इनके बीच एक गहरी लकीर खींचती है।
हाँ ये तो होता है।
कैसे देशभक्ति को अक्सर सबसे बड़ा गुण माना जाता है और कैसे यही कहानी राष्ट्र के नाम पर युद्ध, हिंसा, यहाँ तक कि नफरत को भी सही ठहरा सकती है।
ये हमें पहचान तो देती है पर।
हाँ, पहचान और अपनेपन का भाव देती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर इसकी कीमत होती है बंटवारा, संघर्ष और बहुत सारी मानवीय पीड़ा।
के बारे में
हाँ, वो कहानी जो कहती है कि इंसान प्रकृति से अलग है और उससे ऊपर है, श्रेष्ठ है, ये प्रगति या प्रोग्रेस की आधुनिक कहानी है
कि इंसान का काम है प्रकृति पर विजय पाना, उसे कंट्रोल करना।
हाँ, तकनीक के जरिए उसे कंट्रोल करना और उसका शोषण करके अपनी जरूरतें पूरी करना। लॉय का तर्क है कि यही कहानी है जिसने हमें आज पर्यावरण संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है।
ये हमें पृथ्वी को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह देखने पर मजबूर करती है।
बिल्कुल, सिर्फ संसाधनों का भंडार, न कि एक जीता जागता परस्पर निर्भर सिस्टम जिसका हम खुद एक हिस्सा है।
तो ये तो हुई समस्याओं की बात, क्या लॉय कोई समाधान भी सुझाते हैं?
हाँ बिल्कुल, किताब सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाती, आखिरी हिस्सों में लॉय समाधान की ओर बढ़ते हैं। वो बताते हैं कि कैसे ध्यान, मतलब माइंडफुलनेस या मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस हमें अपनी व्यक्तिगत कहानियों के प्रति, खासकर मैं वाली कहानी के प्रति, ज्यादा जागरूक बना सकती हैं।
कैसे? ध्यान से कैसे होता है ये?
जब हम अभ्यास करते हैं अपने विचारों और भावनाओं को सिर्फ आते जाते मानसिक घटनाओं की तरह देखने का, उनसे अपनी पहचान जोड़े बिना, तो धीरे धीरे हम उन कहानियों की पकड़ से आजाद होने लगते हैं जो हमें बांधती हैं, दुख देती हैं।
अच्छा,
लॉय इसे कहते हैं कहानी से जागना, वेकिंग अप फ्रॉम द स्टोरी।
कहानी से जागना, दिलचस्प। और इसके आगे?
और अंत में लॉय इस बात पर जोर देते हैं कि पुरानी नुकसानदेह कहानियों को पहचानना और उनसे मुक्त होना जरूरी है, पर ये काफी नहीं है।
तो और क्या करना होगा?
हमें सक्रिय रूप से नई, जीवन देने वाली कहानियां बनाने और जीने की भी जरूरत है, और ये नई कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत नहीं होनी चाहिए।
तो कैसी होनी चाहिए?
वो वास्तविकता की गहरी समझ पर आधारित होनी चाहिए, यानी सभी चीजों की गहरी अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस और जुड़ाव पर। हमें ऐसी कहानियों की जरूरत है जो अलगाव के बजाय संबंध को बढ़ावा दें, प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को, शोषण के बजाय देखभाल को, और लालच के बजाय करुणा और कल्याण को।
और लॉय मानते हैं कि यही कहानियां एक बेहतर भविष्य का रास्ता बना सकती हैं।
हाँ, एक ज्यादा टिकाऊ, न्यायपूर्ण और सार्थक भविष्य का।
तो इस पूरी बातचीत से, इस गहरी पड़ताल से कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? सार क्या है?
हाँ, कुछ मुख्य संदेश बिल्कुल साफ हैं। पहला और सबसे बुनियादी, वास्तविकता कहानियों से निर्मित होती है। हम दुनिया को सीधे सीधे नहीं, बल्कि हमेशा अपनी कहानियों के चश्मे से देखते हैं, और ये चश्मा हमारे विचारों, भावनाओं और कामों को दिशा देता है।
दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा?
दूसरा, मैं की कहानी जब उसे ठोस और स्थायी मान लिया जाता है, दुख का एक बड़ा कारण है। ये सोचना कि हम एक अलग थलग स्वतंत्र सेल्फ हैं, एक भ्रम है, और यह हमें असुरक्षित और अतृप्त महसूस कराता है।
हाँ, और इसी कमी को भरने के लिए हम बाहरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। भारत जैसे समाज में देखें तो किसी की जाति या वर्ग या लिंग की कहानी,
बिल्कुल,
उसकी मैं की कहानी को और उसके जीवन के अवसरों को कितनी गहराई से प्रभावित करती है,
पहचान भी देती है और सीमाएं भी बनाती है।
सही। तीसरा संदेश?
तीसरा ये कि सामूहिक कहानियों में जबरदस्त शक्ति होती है, अच्छी भी और बुरी भी। पैसा, राष्ट्र, कानून, धर्म, ये सब शक्तिशाली साझा कहानियां हैं। ये समाजों को जोड़ती हैं, बड़े काम संभव बनाती हैं।
लेकिन
यही कहानियां अन्याय, पूर्वाग्रह और विनाशकारी व्यवहार को भी कायम रख सकती हैं।
सोचिए भारत में कैसे उपभोक्तावाद की कहानी त्योहारों का मतलब बदल रही है।
बिल्कुल,
उन्हें बस खरीदारी का मौका बना रही है।
हाँ, ये तो दिखता है।
या कैसे सफलता को अक्सर सिर्फ पैसे से जोड़ा जाता है।
बिल्कुल।
चौथा संदेश क्या है? चौथा और आज के लिए शायद सबसे जरूरी, आधुनिक प्रगति की कहानी जो अंतहीन आर्थिक विकास और प्रकृति पर जीत पर आधारित है, वो खतरनाक रूप से अस्थिर है। ये हमें धरती की सीमाओं को भूलने पर मजबूर करती है।
हाँ, और ये हमें एक सामूहिक संकट की ओर ले जा रही है।
और पांचवा, कोई उम्मीद की बात?
हाँ, पांचवा संदेश उम्मीद जगाता है। जागरूकता और नई कहानियों का निर्माण ही आगे का रास्ता है। पहला कदम है उन कहानियों के प्रति सचेत होना जो हम जी रहे हैं, व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी।
और फिर?
फिर सोच समझकर ऐसी नई कहानियां चुनना, गढ़ना और जीना जो अंतर्निर्भरता, करुणा, न्याय और स्थिरता पर आधारित हों।
इसके कुछ उदाहरण हैं क्या भारत में?
हाँ बिल्कुल, कई समुदाय हैं जो स्थानीय स्तर पर पर्यावरण बचाने की, साथ मिलकर खेती करने की या बाजार से हटकर अलग अर्थव्यवस्था बनाने की छोटी छोटी कहानियां रच रहे हैं। ये मुख्य धारा की बड़ी कहानियों को चुनौती देती हैं।
इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो खास तौर पर याद रह जाते हैं?
हाँ कई हैं। एक जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगी उसका सार है, हम वास्तविकता से नहीं बंधे हैं, हम वास्तविकता के बारे में अपनी कहानियों से बंधे हैं।
वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है।
है ना, कितनी आजादी देने वाली बात है ये। अगर बंधन हमारी कहानियों में है तो उन्हें बदलने की चाबी भी हमारे ही पास है।
मतलब हम अपनी स्थिति के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने अनुभव के निर्माता बन सकते हैं।
बिल्कुल। एक और गहरा विचार है जो शून्यता वाली बात से जुड़ा है। कहानियों की शून्यता मतलब उनका कोई पक्का अंदरूनी सार ना होना उन्हें कमजोर नहीं बल्कि अविश्वसनीय रूप से लचीला और काम करने लायक बनाता है।
ये भी अद्भुत है। मतलब अगर कहानियां पत्थर की लकीर नहीं है, बदल सकती हैं।
हाँ, तो हम उन्हें बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। ये निराशा की जगह उम्मीद और रचनात्मकता का दरवाजा खोलता है।
और रॉय हमें एक चुनाव करने के लिए भी कहते हैं।
हाँ, वो एक तरह से कहते हैं, सवाल ये नहीं है कि कहानियों पर विश्वास करें या नहीं, क्योंकि हम उनके बिना जी ही नहीं सकते। असली सवाल ये है कि हम किन कहानियों के सहारे जीने का चुनाव करते हैं।
तो ये कहानी चुनना एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है।
बिल्कुल, हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन सी कहानी सुनने में अच्छी लगती है, बल्कि ये भी कि कौन सी कहानी हमें, हमारे समाज को, इस धरती को एक ज्यादा स्वस्थ, न्यायपूर्ण और करुणामय भविष्य की ओर ले जाती है।
ये सिर्फ सोचने की बात नहीं, जीने का तरीका चुनने का आह्वान है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम इन विचारों को अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं?
हाँ, ये जानना जरूरी है।
सबसे पहला कदम शायद है अपनी अंदरूनी बातचीत पर ध्यान देना, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं।
कैसे?
जब भी मन में कोई जोरदार नकारात्मक विचार या विश्वास उठे, जैसे मैं ये कभी नहीं कर सकता सकती या कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो उसे एकदम सच मानने के बजाय उसे पहचाने।
अच्छा,
कहें अच्छा ये मैं असफल हूँ वाली कहानी चल रही है या ये कोई मुझे पसंद नहीं करता वाली कहानी है। सिर्फ उसे एक कहानी के रूप में देखना ही उसकी पकड़ ढीली कर सकता है।
ये तो कर सकते हैं, और रिश्तों में?
रिश्तों में तो ये कमाल कर सकता है। जब किसी अपने से असहमति हो तो तुरंत उनकी बात काटने या उन पर हावी होने के बजाय एक पल रुकें
और
पूछें उनकी तरफ की कहानी क्या है, वो दुनिया को किस नजरिए से देख रहे हैं कि उन्हें अपना व्यवहार सही लग रहा है। इससे सहानुभूति बढ़ती है और अक्सर झगड़े सुलझाने का रास्ता भी निकलता है।
हाँ, समझने की कोशिश करना। और मीडिया के बारे में क्या? हम तो मीडिया से घिरे हुए हैं।
बिल्कुल, आज के मीडिया संतृप्त युग में ये आलोचनात्मक नजरिया बहुत जरूरी है। कोई भी खबर पढ़ें, विज्ञापन देखें या सोशल मीडिया पोस्ट, रुक कर पूछें।
क्या पूछें?
यहाँ कौन सी कहानी सुनाई जा रही है, इस कहानी से किसे फायदा हो रहा है, क्या छुपाया जा रहा है या किस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ये हमें गुमराह होने से बचाएगा।
हाँ, एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनने में मदद करेगा। और खरीदारी करते वक्त उपभोक्ता के तौर पर?
हाँ, उपभोक्ता के रूप में भी हम सचेत हो सकते हैं। कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है या मैं किसी कहानी के असर में हूँ?
कैसी कहानी?
जैसे ये चीज मुझे खुशी देगी या इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी या ये चीज होगी तो लोग मुझे स्वीकार करेंगे। जैसे त्योहारों पर महंगे तोहफे देने की कहानी या लेटेस्ट गैजेट रखने की सफलता की कहानी।
इससे हम ज्यादा सोच समझकर चुनाव कर पाएंगे।
हाँ, और उपभोक्तावाद के उस अंतहीन चक्कर से शायद थोड़ा बाहर निकल पाएंगे।
हाँ।
और अंत में शायद सबसे जरूरी
क्या?
प्रकृति के साथ हमारे संबंध की कहानी पर फिर से सोचना।
अच्छा,
क्या हमारी कहानी हमें प्रकृति का मालिक और शोषक बनाती है या उसका एक विनम्र सदस्य और देखभाल करने वाला? क्या हम प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझते हैं या जीवन का एक जटिल जाल जिससे हम जुड़े हुए हैं?
इस कहानी को बदलना शायद हमारे समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
हाँ, ताकि हम सच में एक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ सकें।
मेरे लिए तो इस किताब से सबसे बड़ा सबक यही है कि हम अपनी दुनिया के सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम उसके सक्रिय रचयिता हैं।
हाँ।
हमारी कहानियों में, हमारे विश्वासों में बदलाव लाने की जबरदस्त ताकत है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक बड़ी संभावना भी।
और मेरे लिए सबसे असरदार बात ये है कि कैसे लॉयम व्यक्तिगत बदलाव, मतलब मैं की कहानी को समझना, और सामाजिक बदलाव यानी बड़ी सामूहिक कहानियों को चुनौती देना, इन दोनों को जोड़ते हैं।
हाँ, ये दोनों जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल।
वो साफ करते हैं कि सच्ची जागरूकता और बदलाव के लिए दोनों लेवल पर काम करना जरूरी है। ये किताब बौद्ध ज्ञान को सिर्फ पर्सनल पीस तक ही नहीं रखती, बल्कि उसे आज की बड़ी सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से सीधे जोड़ती है।
तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है?
नहीं, ये जीने के लिए एक न्योता है, ज्यादा जागरूकता, जिम्मेदारी और करुणा के साथ।
इस गहरी चर्चा के बाद शायद सुनने वालों के मन में ये सवाल उठे, उनकी अपनी सबसे शक्तिशाली मगर अदृश्य कहानी कौन सी है और क्या वो उसे समझने और शायद बदलने के लिए तैयार है? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।